मुख्य समाचारों में मारियूपोल में यूक्रेनी फाइटर्स डटे हुए। गठबंधन ने लेबर के इस दावे को खारिज किया कि सोलोमन द्वीप पर सुरक्षा में कोई चूक हुई है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दावा है कि लगातार बमबारी के हफ्तों बाद बंदरगाह शहर मारियूपोल मुक्त है, लेकिन इस घोषणा के बावजूद यूक्रेनी फाइटर्स मारियूपोल में डटे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुतिन के दावे पर कहा है कि उनका मानना है कि यूक्रेनी सेना अभी भी उस शहर में मौजूद है। ये यूनिट कमांडर कॉन्स्टेंटिन नेमिचेव भी जीत की घोषणा पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आजोव रेजिमेंट के सैनिक अपने पदों पर हैं और उनके लड़ाके विशाल मिल में रक्षा करने वाले सैनिकों में से हैं।
Our forces are in Mariupol, Azov, and they continue to hold the city. It is a fortress where our fighters hold at least 10,000 enemy forces. If they fall, this 10,000 strong army will start to go towards the north and help to occupy Donbass. So the boys in Mariupol are carrying out a huge and important mission.
यूक्रेन ने कहा है कि पुतिन मारियूपोल में अपने बलों के साथ अंतिम संघर्ष से बचना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन के पास यूक्रेन को हराने के लिए सैनिकों की कमी है। इसके साथ ही यूक्रेन ने नागरिकों और घायल सैनिकों को निकालने में मदद की अपील भी की। क्रेमलिन ने रूसी सैनिकों को विशाल स्टील के काम को रोकने का आदेश दिया है जहां पर यूक्रेनियन डटे हुए हैं, और उन्होंने पहले दिए गए अल्टीमेटम पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। लेबर ने ऑस्ट्रेलियन लोगों से आगामी चुनाव में गठबंधन को वोट नहीं देने का आग्रह करते हुए कहा कि सोलोमन द्वीप में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर से पता चलता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। लेबर के अभियान के प्रवक्ता जेसन क्लेयर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी थी और वो ऐसा करने में विफल रहा। उन्होंने स्कॉट मॉरिसन पर व्यवहार का पैटर्न रखने का आरोप लगाया है जहां वो हमेशा कोर्ट किसी और को दोष देने की कोशिश करेंगे।
Understand what China's up to. Expect that they're going to be in there trying to assert influence and make sure that we respond. You know, we knew about this in August. And what did we do? It seems two-thirds of bugger all. And as a result, this security agreement has now been signed between China and the Solomon Islands.
लेकिन गठबंधन ने सोलोमन द्वीप संकट से निपटने के लिए अपना बचाव करना जारी रखा है। क्वींसलैंड में अभियान के दौरान एक रक्षा अनुबंध व्यवसाय में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार के समझौते करने वाले प्रशांत देशों का विरोध नहीं करना चाहिए। रक्षा मंत्री पीटर डाटन ने कहा कि चीन इस क्षेत्र में आक्रामक रुख अपना रहा है, और श्री डाटन ने लेबर पर इस विषय के सभी मुद्दों को नहीं समझने का आरोप लगाया।
If you want to take Richard Marles's word or Anthony Albanese's word that somehow what's happening in the Indo-Pacific at the moment is the fault of Australia, then they don't have any comprehension. They haven't had the security or intelligence briefings.
स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया की वृद्ध देखभाल प्रणाली पर बचाव करना भी जारी रखा है, क्योंकि लेबर का अभियान है कि 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ का एक अनुपात हो। प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की वृद्ध देखभाल प्रणाली को वैश्विक मानव के रूप में देखा जाता है। श्री मॉरिसन का कहना है कि सरकार 2025 तक 24/7 यानी 24 घंटे के आधार पर सुविधाओं में नर्स रहे इस पर काम कर रही है। ये इस क्षेत्र में रॉयल कमीशन की सिफारिशों में से एक है। उन्होंने कहा है कि पहले ही वर्ष में 24 घंटे के लिए नर्सों की अनिवार्य उपस्थिति वाला लेबर का संकल्प, यदि वो चुनाव जीतती है, ये रातों रात नहीं हो सकता। रॉयल कमीशन ने पाया है कि सिस्टम में कर्मचारियों की कमी और उनके लिए कम वेतन है। देखभाल में वृद्ध ऑस्ट्रेलियन लोगों में से आधे से अधिक कुपोषित या जोखिम में पाए गए। न्यू साउथ वेल्स लेबर का कहना है कि प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करने के बाद वो अल्पसंख्यक राज्य सरकार के समर्थन में कटौती नहीं करेगा। लेबर लीडर क्रिस मिंस ने पुष्टि की है कि विपक्ष गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। साथ ही कहा कि सरकार का चुनाव मार्च 2023 में मतदाताओं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। लेबर का ये बयान प्रमुख स्वतंत्र सांसद एलेक्स ग्रीनविच के बाद आया है, जिसमें फेडरल लिबरल के विवाद के चलते राज्य सरकार के लिए अपना समर्थन वापस लेने की बात की है। जैसा कि विदित है, कैथरीन डेप्स ने लड़कियों के खेल खेलने वाली ट्रांसजेंडर महिलाओं के खिलाफ कई आक्रामक टिप्पणियां की हैं। श्री ग्रीनविच का कहना है कि वो इस बहस के नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, खासकर युवा ट्रांस लोगों पर पड़ रहे प्रभाव पर। उनका कहना है कि अगर ट्रांस लोगों पर ऐसे हमले जारी रहे तो मौजूदा सरकार के लिए समर्थन बनाए रखना उनके लिए असंभव होगा। न्यू साउथ वेल्स में सरकार को बनाए रखने के लिए प्रीमियर को राज्य के निचले सदन में कम से कम 2 क्रॉस बेंचर्स के समर्थन की आवश्यकता है। क्वींसलैंड का कहना है कि जब कोल्ड्रेक अखंडता रिपोर्ट मिलेगी वो उसकी सिफारिशों को लागू करेगा। एलएनपी लीडर डेविड क्रिसफुली ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की औपचारिक जांच की मांग करते हुए कहा है कि सिस्टम में और कुछ भी विश्वास बहाल नहीं करेगा। लेकिन कार्यवाहक प्रीमियर स्टीवन माइल्स का कहना है कि अभी इस स्तर पर यह रिपोर्ट केवल प्रारंभिक है और सरकार अंतिम रिपोर्ट के किसी भी निष्कर्ष का स्वागत करेगी।
These are initial observations, he says himself, based on the interviews that he has currently performed. It doesn't yet include findings or recommendations, though it does start to indicate the areas he thinks that we can improve upon, and we welcome that. Certainly, we welcome the opportunity to have these set of fresh eyes, as the Premier indicated the review would be, to look at what we do and determine how we can do it better.
इस बीच क्वींसलैंड ने पुष्टि की है कि ये सकारात्मक कोविड-19 मामले के निकट संपर्क के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संगरोध आवश्यकताओं को बदल रहा है। एसिम्प्टोमेटिक निकट संपर्कों को घर के अंदर मास्क पहनना होगा, अपने नियोक्ता को उनकी स्थिति के बारे में बताना होगा और यदि संभव हो तो घर से ही काम करना होगा और हर 2 दिन में परीक्षण करना होगा। समुदाय में बाहर जाने से पहले एक नकारात्मक परिणाम की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मंत्री इवेट दात का कहना है कि क्वींसलैंड को अन्य सभी पूर्वी राज्यों के अनुरूप लाने के लिए अगला कदम उठाने का समय आ गया है।
We are moving from a situation where these measures are controlled by public health directives and now leaving it to individuals and employers to look at this from a workplace health and safety measure.
ये परिवर्तन अगले सप्ताह गुरुवार 28 अप्रैल से प्रभावी होंगे। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने निकट संपर्क संगरोध आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए हरी झंडी दिखाई है। संभावित परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी आज बैठक कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत में शानदार स्वागत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्षण है, क्योंकि यूके भारत संबंधों में चीजें कभी भी उतनी अच्छी नहीं रहीं जितनी अब हैं। ब्रिटेन और भारत की रणनीतिक रक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में घनिष्ठ साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 73 सेंट और भारत के लगभग 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, T20 में पूर्व कप्तान MS धोनी ने कल चेन्नई को एक रोमांचक मुकाबले में जमाई के खिलाफ जीत दिलाई। मुंबई के खिलाफ आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी। इस दौरान उन्होंने जयदेव उनादकट के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए टीम को जीत दिलाई। इस उम्दा पारी के बाद लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या धोनी T20 वर्ल्ड के लिए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। वैसे धोनी पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस सीजन के बाद IPL से भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अब बात मौसम की। कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल। अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में भी आंशिक रूप से बादल। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में 1-2 बौछारें। अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में 1-2 बौछारें। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।